पापा, एक सवाल आया है कि एक घर में तीन चार बहुएं होती हैं, सास उनके दरमियान इंसाफ नहीं करती, तो उसके लिए क्या हुक्म है?
यहां ये बहू अव्वल तो सास के मातहत है या नहीं, ये तनकीह तलब है, क्योंकि तो बहू मातहत है अपने शोहर के। अब सास को ये जरूर चाहिए अखलाकी तौर पर कि सबके साथ हुस्ने सलूक करे, और ये एक फितरी अम्र है कि जो मतलब बहू सास की खिदमत करेगी वो अच्छी लगेगी, और जो बहू सास के सामने जबान निकालेगी वो अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए सारी बहुओं को चाहिए कि जिसकी तीन चार बहुएं हो ना, तो वो सास है ना, वो भी सास अगर बुढ़िया नहीं तो बुढ़िया कौन, सार बिचारी की उम्र इतनी हो गई होगी कि चार चार बेटे उसने ब्याह दिए, अब नानी दादी, अब नाना हो गया दादा हो गया तो रिटायर हो गया, समझो बुढ़ा हो गया, हम हमारी कैटेगरी आ गई। तो अब इनको चाहिए कि बहू से बेटियों से बेटों से सबसे बना के रखे, एक ही सूरत है, शफकत शफकत शफकत, टर 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 करेंगे तो लड़ाई होती रहेगी। मेरा कोई बेटा मेरे खिलाफ नहीं है, सब मेरे से सेट है, मैं शफकत करता हूं, सिर्फ शफकत करता हूं, शफकत नहीं सिर्फ शफकत, मेरी कोई बहू मेरे खिलाफ नहीं है, क्योंकि मैंने इनसे दोस्ती नहीं रखी, मैंने आज तक अपनी बहू को देखा ही नहीं है ना, मिलना जुलना या वो बेतकल्लुफी अपनी जगह पर मैंने यानी कि वो आमना सामना ही नहीं किया अभी तक, हालांकि मैं नाना दादा बन गया, मैं दूर ही रहा हूं। अगरचे पर्दा वाजिब नहीं है ससुर और बहू के दरमियान, लेकिन बेहतर है कि पर्दा रखे, इसमें आफियत है। तो मैंने आफियत का वो जो है ना रूट वो अपनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी एक नाराजगी का क्या सवाल है, अपना सपना नहीं है कोई, मतलब है नहीं, ताल्लुकात ही नहीं है इन मानो कर कि बार बार फोन पर बात या नहीं, मतलब फोन पर भी शाजो नादर कभी इक्का दुक्का कोई दो चार अल्फाज कभी किसी से हो गए हो तो वो भी कभी मतलब बिल्कुल ही मतलब तरक्की भाई नहीं। अब जैसे दूसरी बहू ना छोटी बहू, मेरा ख्याल इससे कभी भी मुझे याद नहीं कि फोन पर बात करने की नौबत आई, नहीं मेरा ख्याल नहीं आई नौबत, फोन पर भी बात करने की नौबत आई, बात कभी हुई नहीं मेरी। ये पता है कि मेरे बेटे की शादी हो गई है और बच्चे का बाप बन गया, इतना पता है, कभी आमना सामना के बात भी आवाज भी नहीं सुनी, एक की सुनी आवाज बहुत पुरानी। एक बार वो मुझे बेटे ने मतलब फोन किया था, मैं बाहर था, ये रोती है क्या, ईद के बहाने मुझसे बात नहीं करेंगे, तो फिर मैंने बात की थी, मुबारकबाद दी थी, ऐसा कुछ मतलब हुआ था एक दो बार। फिर कभी दो एक बार वो बीमारी में मैंने यादत की है उनकी, कोई यानी बाकायदा मेरा ट्रम्स नहीं है, या सलाम भेज देता हूं वो मुझे सलाम भेज देती हैं, इस तरह हो रहा है। कभी कोई किताब भेज दी, तोहफा भेज दिया मैंने, वो होता है, ये भी वन साइड है, कभी आया नहीं है तोहफा आज तक, मैं भेज देता हूं, किताब भेज देता हूं, लिख देता हूं इतने दिन में पढ़ना है, तो ये भी बाजू का खुशखबरी आ जाती है कि हमने पढ़ ली है, ये भी एक मदद नहीं भूले कि तोहफा अभी तक नहीं आया मेरे को, मैंने भेजा है अल्हम्दुलिल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलु अअलम अज्जा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अला नबी
सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। बाबा बहू का क्या हुआ
जी?
तीन बहू,
मैंने अर्ज किया ना कि अब इसमें मैं तनकी तलब है, क्योंकि शोहर के मातहत होती है वो बहू, यानी बीवी होती है ना उसकी, तो उसको तो इंसाफ करे उससे, और वो इंसाफ यूं करे कि अब वो ये अदलिया तो कायम नहीं होगी, लेकिन उसको यूं करना चाहिए कि सब बहुओं के साथ हुस्ने सलूक करे।
भैया यहां वाटपा मतलब मसला ये है कि दो बहुओं को तरक्की में लेने के लिए यहां तीसरी बहू के बारे में, जैसे वो है ना वो बहुत अच्छा पकाती है, नहीं वो बहुत अच्छा काम करती है, उसके हाथ तेज है, वो बहुत फास्ट काम करती है, यूं मतलब कि इनको शायद ऐसा लगता है कि अगर हम किसी दूसरी बहू की तारीफ करेंगे ना तो ये पहली वाली इसको देकर को तेज कर देगी या वो कर देगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसका साइड इफेक्ट आता है, और इससे गालिबन ऐसा लगता है जैसे सास का जो मियार है या मॉरल है वो शायद डिस्टर्ब होता है कि ये दूसरी बहू की तारीफ करती है। तो यहां क्या करना चाहिए जिसकी दो या तीन या चार बहुएं हों اس کو کم از کم ان میں کلام کے حوالے سے، کیوں کام کا تو گھر میں مل جل کر سب کرتے ہی رہتے ہیں، یا الگ الگ بھی رہتے ہیں تو ساتھ سے کبھی ادھر جانا ادھر جانا، اس کے ملنا اس سے ملنا رہتا ہے، تو آپس کی گفتگو میں ساس کو کیا احتیاط کرنی چاہیے کہ ساس کا مقام اور معیار یہ ان کے گھروں کے اندر قائم رہے؟
وہ ہے نا اپنے فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب امی الغافلین میں ایک حکایت ہے، کسی مشہور بزرگ کی حکایت ہے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی یا کسی مشہور کی، کہ وہ دو طبیب سے ان کا کچھ واسطہ پڑا، دو طبیبوں سے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایک طبیب کی اس میں غیبت نہ ہو جاتی نا تو میں کہتا کہ ایک طبیب سے وہ جو وہ طبیب ہے نا وہ بہت یعنی اچھا علاج جانتا ہے، اور وہ دونوں طبیب تھے یہودی، تو یہ یہودی جو ذمی تھے، تو ذمی کی غیبت حرام ہے، ذمی وہ ہوتا ہے کہ جو اسلامی حکومت کی پناہ میں ہوتا ہے اور اس کو جزیہ وغیرہ بھرتا ہے وہ، تو اس لیے اس کی عزت اس کی جان اس کا مال اس کی حفاظت یہ گورنمنٹ کی اس میں ذمہ داری ہوتی ہے، ان کی غیبت بھی حرام تھی، مگر اب دنیا میں کہیں بھی کوئی کافر ذمی نہیں ہے، سب حربی ہیں، تو ان کی غیبت جائز ہے حربی کافر کی، تو یہ ایک مطلب سمجھانے کا مدنی پھول ہے، بہت سمجھنے کا مدنی پھول ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اگر چار بہویں ہیں تین بہویں ہیں کہ ایک کے بارے میں کہ یہ بہت اچھا پکاتی ہے تو اس کا مطلب دو کی تو کاٹ ہو ہی گئی نا، اور وہ دو اگر اللہ کے ڈر سے مالا مال ہوئی خوف خدا والی ہوئی تب تو صبر کر جائیں گی، ورنہ شاید حسد میں پڑ جائیں گی اور ساس کی مخالف بھی ہو جائیں گی، اور پھر یہ کہ تہمت غیبت بدگمانی چغلی لگائی بجائی طرح طرح کے گناہوں کا ایک دروازہ کھل سکتا ہے اس میں، یعنی وہ اسٹو میں رہیں گی کہ اب یہ وہ منظور نظر بہو ہے یہ کبھی غلطی کرے تو پھر اس کو ہم اچھا لیں، تو یہ اسٹو میں رہنا یہ بھی بہت بری بات ہے، تو اس طرح مطلب یہ کہ ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ کسی ایک کی تعریف، یعنی کہ آپ اپنے اوپر سوچے نا، ابھی کتنے بھائی کتنے نعت خوان ہیں اس وقت موجود، تین ہے نا، اگر میں بولوں کہ یہ جو نیچے بیٹھا ہے نا اس کی آواز بہت اچھی ہے، ان کو پوچھو کیا گزرے گی، کچھ بھی نہیں گزرے گا، کچھ تو گزرے گا نا، اچھا ہی گزرے گا، چلو تو گزرے گا تو صحیح نا، ایسے وہ بولتے نہیں ہیں، دل پہ کچھ تو ہوگا لگے یار اپنی آواز ایسی ہے بس، صدمہ تو ہوگا،
یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو تسلیم کر لینا چاہیے،
تسلیم کر لینا چاہیے، چلو اپنا قصور نہیں ہے، دل میں کچھ آیا تو آپ کا مدنی ماحول ہے، مدنی ذہن ہے، دعوت اسلامی کی تو ذمہ داری بھی ہے نا آپ کی، ماشاء اللہ، تو یہ بڑا دل ہے کہ چلو بھائی غیبت نہیں کرنی ہے، اعلان جنگ ہے اس کے خلاف، مگر دل میں کچھ مزہ نہیں آئے گا، اب کتنے یہاں مبلک بیٹھے ہوئے ہیں ہے نا، کچھ یہ بھی مبلک ہے یہ بھی مبلک ہے، میرا خیال ہے اکثریت مبلک ان کی بیٹی ہے، اب میں بولوں یار اختر بھائی کا بیان ان سب سے اچھا ہے، اب یہ سب کا بھاؤ پتا چل جائے گا کہ کس کو ہمدردی بولتے ہیں اور کس کو مطلب خوشی بولتے ہیں، کسی کو غم بولتے ہیں، یہ سب کو سمجھ آ جائے گی، اتر بھائیوں کے کپڑے میں سمائیں گے نہیں، سب کا صدمے سے برا حال ہو جائے گا، تو ان کا صدمے سے برا حال کے جن کا مدنی ذہن ہم اس نے زندگی تک بنا ہوا ہے، تو وہ ماڈرن گھرانے، وہ دین سے دور گھرانے، دینی ماحول سے عمل سے دور گھرانے، اب ان میں اگر کوئی بہو کی تعریف کرے وہ بھی ساس جو ویسے آگ پانی کا تو ہوتا ہی ہے ان کا آپس میں، ایسے میں اگر یہ بہو کسی ایک کو ایک بہو کو منظور نظر بنا لے تو دوسرے بہو ہیں تو میرا خیال ہے رات میں اٹھ اٹھ کر دعا مانگے گی کہ یا اللہ اس بڈی کو اب اٹھا لے، اس کی مٹی ٹھنڈی کر دے، تو بہوؤں اس ساسوں کو چاہیے کہ حکمت عملی کے یہ مدنی پھول ابھی بیچاریاں سن بھی رہی ہوں نا، سنتی بھی ہیں سمجھتی بھی ہوں گی، یوں ہوتا بھی ہوگا یہی کرنا چاہیے، مگر پھر وہ کمانڈ چھوٹ جاتی ہے،
انشاءاللہ گلدستہ بھی تو بنے گا نا
انشاءاللہ، پھر کمان جب چھوٹتی ہے نا پھر کچھ بھی یاد نہیں آتا،
بریک فیل ہو جاتا،
کیسا مدنی گلدستہ اور کیسا مدنی مذاکرہ،
بریک فیل ہو جاتا ہے،
میں سچ بولتی ہوں جھوٹ تھوڑی بولتی ہوں، یہ پکا نا بہت اچھا پکا دی ہے، یہ تو جلا دیتی ہے، उसको नमक का ही मतलब भान नहीं रहता कि कितना नमक डालना चाहिए, और उसको जब भी चाय दो तो गर्मा गर्म शरबत पेश करती है, इतनी चीनियां डाल देती है। तो कह ये माशाल्लाह बहुत अच्छा पका दिए। अब ये जो दो तीन जो है ना कई काम से,
ये जो घर में आदमी का जो दिमाग खराब होगा ना, तेरी माँ को समझा, आपकी माँ को समझा, ये हमारी कोई कुर्बानी कबूल ही नहीं करती। बाबा इसमें से मैं दूसरे काम अगर करती भी तो उसमें भी तो इनकी दिल शिकनी तो है ना कि मतलब हमारे काम को कोई अप्रिसिएशन नहीं। अब ये बाबा ऑफिस के अंदर भी दफातर में भी होता है कि एक दूसरे के वो ये समझते हैं कि ये हम इस तरह कंपटीशन पैदा कर देंगे, लेकिन अमले में कंपटीशन यू पैदा नहीं किया जाता। आपस में नफरतें पैदा होती हैं और सेठ और इस तरह के काम करने वालों के लिए बुग्ज और कीने की फिजा कायम होती है। ये कंपटीशन कंपटीटर के साथ होता है, कभी भी घर के अंदर एक इदारे के अंदर जो कंपटीशन पैदा नहीं किए जाते। उसके पैदा करने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन एक के सामने दूसरे की इस तरह मतलब के बात करना कि अगले को लगे यार मेरी आदतों को इनकी चीज अच्छी लगी नहीं है, तो ये तो हर जगह बाबा कमजोरी और खराबी पैदा करेगी ना, घर हो या दफ्तर हो या कोई इदारा हो।
बेशक।
और जैसे कि आप या कोई भी जैसे कोई आलिम होता है, कोई बड़ा बुजुर्ग होता है, ये अगर किसी की बाबा तारीफ करता भी है ना, तो वहां चले कहीं कहीं किसी न किसी पहलू पे जाकर कोई मखफी किस्म का भी कोई अकीदत की ऐसी चीज आ जाती है कि आदमी सबर या बर्दाश्त कर भी जाता है, अगरचे उसको मतलब बीती हो या ना बीती हो। मगर जिस माहौल की हम बात कर रहे हैं वहां तो बाबा को अकीदत और एहतराम का कोई ऐसा, सास और बहू में अकीदत के जैसे आ गए मेरी तो समझ
आगो पानी है।
अकीदत कहां से आ जाएगी? तो बहुत एहतियात करनी चाहिए। ऐसा घर अमन का घेवारा बन जाए अगर ये कुफले मदीना
लगा रहेगा,
कुफले मदीना
लगा रहेगा,
कुफले मदीना
लगा रहेगा,
एक चुप
सो सुख,
एक चुप एक चुप,
पहले तो लो फिर बोलो,
पहले तो लो
फिर बोलो,
पहले
तो लो फिर बोलो,
पहले
तो लो फिर बोलो। अगर ये तोलना आ जाए ना,
तराजू ही टूटा हुआ है बाबा, वेट स्केल ही नहीं है हमारे पास, तराजू ही नहीं है, तोले बोले किधर आप भी बाबा।
नहीं ये मुहावरा है ना, पहले बात गौर करे फिर मुंह से निकाले,
वो ज़हन ही नहीं है जो तोला, ज़हन ही नहीं है जो तोले बाबा।
नहीं मोमिन की ज़बान जो है ना वो दिल के पीछे होती है
माशाल्लाह,
वो बोलने से पहले वो दिल से गुजर के निकलती है बात, और मुनाफिक की ज़बान के पीछे दिल होता है, तो वो मतलब दिल की तरफ रुजू करने की नौबत नहीं आती, वो जैसे भी जबान पर आया वो फायर कर देता है, बोल पड़ता है और फिर बेचारा फंसता है, ठीक ठाक फंसता है। ये ना बोला होता तो अच्छा था, लेकिन अब वो तीर निकला हुआ पलटता नहीं है, जो यहां नहीं समाई दो होंठों में कहीं नहीं समाती,
समाई
ये मसाइल करती है।
तबीब वाला कितना प्यारा मदनी फूल है बाबा, अगर ये हमारी अक्लों में बैठ जाए।
बिल्कुल।
गिबत से बचने के हवाले से हमारे बुजुर्गों का जहन कितना प्यारा था बाबा, कितनी बहुत अंदर से बात निकाली बाबा, और यहां तो कोई बचता ही नहीं
हर मामले में। यार देखो शागिर्द को भी अगर उस्ताद भी बोलेगा ना कि तुम लोगों में ये देखो सबसे सही है, वो दूसरे शागिर्द खिलाफ हो जाएंगे।
जर्फ नहीं है ना बाबा आज
हमारे। अब ये दो हजरात बैठे हैं माशाल्लाह, दोनों बहुत अच्छे आलिम हैं ये। अब जैसे कि मैं सराहत कर दूं ना कि भाई हसन आप यार ये आपसे बड़े हैं, इनको बोलने दिया करो, ये आपसे ज्यादा जानते हैं, ये बोलेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन मजा नहीं आएगा इनको, मजा आएगा बिल्कुल नहीं आएगा। तो आहिस्ता जाके फिर ये दूर हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं ना कुछ, दूर हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ही एहतियात, वैसे ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोला, ये हमारे समुंदर इतना जर्फ रखते हैं माशाल्लाह।
दुआ करें बाबा अल्लाह हम सबको जर्फ अता फरमाए।
नहीं वाकई जर्फ हम लोगों का बहुत कमजोर है, अल्लाह ताला मुझे भी आजमाइश में ना डाले, दावत इस्लामी में दूसरा पीर जाग जाए तो फिर मेरा मतलब जर्फ आएगा सामने कितना है। अभी तो अगर कब्जा है फिलहाल तो, लेकिन कोई जाग गया अगर फिर तो फिर देखेंगे क्या होता है, अल्लाह ताला आजमाइश में ना डाले। बहुत पहले एक वाक्या मुझे याद आ रहा है कि एक है पीरी मुरीदी करते हैं एक साहब, तो एक फौजी मेरे पास वो आया, वो आता रहता था, बहुत पुराना वाक्या दावत इस्लामी के बिल्कुल अवाइल का वाक्या है, जिन दिनों में बसों में वेगनों में जाकर वो इलाकों में जाकर चौक इस्तेमाल करता था। फिजान मदीना की तामीर भी नहीं होती, तस्वर भी नहीं था, फिजान मदीना का नाम भी नहीं था, शायद इस्लामी भाई की हो सकता था वो इस्तलाह भी हुई कि नहीं हुई, खैर इस्तलाह बहुत बहुत पहले बन गई थी, वो इसलिए मैंने इस्लामी भाई इस्तिलाह मेरी समझ में आ रही थी कि मैंने कहा इस्लामी भाई अब मैंने बोलना शुरू कर दिया क्या, अगर कहीं दावती दावती कहना शुरू ना कर दें, दावत इस्लामी की निस्बत से तो दावती तो फिर बोले वो खाने पीने वाले दावती, तो इससे पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई नाफिज हो गया। खैर, तो वो एक आए कि वो फुलां साहब हैं जी इल्म है, वो आप यानी उनको उनको अमीर दावत इस्लामी बना दें, उनको होना चाहिए अमीर दावत इस्लामी। लब्बैक। मैंने कहा देखो मैं थोड़ा ही हुआ था, मैंने कहा देखो मैं इस तरह काम करता हूं कि अपने घर से टिफिन बॉक्स उठाता हूं और बाबुल मदीना के किसी इलाके में चला जाता हूं, कभी बेगन में मुर्गा बन के भी सफर करता हूं, खड़े खड़े भी सफर करता हूं, फिर वहां मैं बयान वगैरह करता हूं, मेरे लिए कोई कार नहीं आती लेने के लिए, मैं खुद पहुंचता हूं।
अच्छा,
फिर वो खाना निकाल कर खा लेते हैं, कभी होटल में चले जाते हैं तो कुछ खरीद कर मिक्स करके हम खा लेते हैं, काफिला जमा करके हम चले जाते हैं। काफिला भी शायद इस्तिला नहीं थी उस वक्त, तो हम ये इस तरह कर रहे हैं और इसकी वजह से लोगों का हमारी तरफ रुजू है, ये आप देख रहे हैं लोग जमा हो रहे हैं। मैं ये कर रहा हूं इसलिए नहीं, बल्कि मुझे इस तरह कामयाबी मिली है तो 150 आदमी मैंने जमा कर लिए, अब मैं ऐसे ही जज्बात में आकर किसी को सौंप दूं और कुछ हो जाए तो सारा टूट फूट का शिकार हो जाए तो क्या वो जिन साहब का आप कहते हैं क्या वो ऐसा कर लेंगे, जैसा बस में सफर करेंगे, कार उनके लिए नहीं आएगी, सफर करेंगे वो हाथ में उठाकर टिफिन जाएंगे, इस तरह काम करेंगे वो? रोज रोज भागना पड़ता था, कुछ हफ्ते में दिन मैंने मुख्तस कर लिए थे तो वो फिर हाँ सदर तक कन्वेंस मिले, तकरीबन सदर तक हमको कन्वेंस मिलता था 5-6 किलोमीटर रात बीच में कुत्ते भौंकते हो पैदल मार्च करेंगे वो, तो इस तरह मतलब मेरे कि आमतौर पर ऐसा होता था कभी न कभी कोई बीच में है, कभी वो लाइट हाउस के पास म्यूनिसिपल टावर के पास, कभी कोई ऐसे या अधूरे रस्ते तक कोई बस मिल भी जाती थी हम हाथ रोक लेते थे, कभी कोई लिफ्ट दे देता था कार वाला, ऐसी लूटमार नहीं थी जैसी अब है कि लोग डरते हैं कार में बिठाते नहीं है, तो बहरहाल हम ठोकरें खाकर घर पहुंच जाते थे, बदन जवान था हौसला भी अल्हम्दुलिल्लाह जवान था, तो हम मतलब यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह थकते नहीं थे लगे हुए थे, तो मैंने कहा ये सब करेंगे ये, इस तरह की मैंने उनको बातें की, तो वो फौजी बड़ा मतलब मैंने कहा जोश में था क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल वो करेंगे, मैंने कहा ठीक है अगर वो करते हैं तैयार हैं तो मैं इनको आगे बढ़ा दूंगा, अमीर दावत इस्लामी का ताज इनके सर पे अपने रख देंगे और मैं इनके जूते लेकर इनके पीछे चलूंगा और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको इनके मुरीद बनाऊंगा, मैं पूरी पीरी मुरीदी से दस्तबरदार हो जाऊंगा, इनके सबको मुरीद बनाऊंगा, पीर साहब भी थे आप बात करें जाकर, और मुझे पता था कि ऐसा होना नहीं है, तो खैर वो जब फिर मिले तो फिर मिले ना तो उन्होंने क्या बोला पता है कि जब मैंने ये आपकी बात पहुंचाई उनको तो इन्होंने बोला है दावत इस्लामी वाले इनके यहां तो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, ये तो आलिमों को घास ही नहीं डालता, तो इसमें कैसे इनमें कैसे काम करूंगा मैं, तो उसने बारह फौजी बजदन होकर आ गया और मुझे बोला कि आप सही हो करते रहो, तो ये क्या बातें करना आती है, बातें सब करना जानते हैं, बस ये कि बातों से काम नहीं होता करने से काम होता है, अल्लाह नसीब करे, और हमारी मतलब ये कि अल्लाह करे कि हम 100 बरस के भी हो जाए हमारा हौसला बूढ़ा ना हो, ये जवान रहे बस, और हमको बस कुड़ाता रहे, अब दौड़ने का मेरा टाइम खत्म हो गया, कुड़ने का अल्लाह करे कि मेरा जो मर्ज है वो इससे शिफा ना मिले मुझे, दिल जलता रहे अल्लाह के दीन के लिए, मुसलमानों की इस्लाह के लिए, उम्मत की भलाई के लिए, तो वो मैं बात आई तो अर्ज कर दी कि मैंने वो ऑफर कर दी थी कि मैं इंशाल्लाह पिछड़ जाऊंगा और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जितने भी आएंगे ना मैं सबको इनका मुरीद बनाऊंगा, ये मुरीद बनाने से मदनी काम में बहुत फायदा होता है, और दावत इस्लामी अब तक बची भी वरना बड़ी आंधियां और तूफान आए हैं इसके राह में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तरीकत की बरकत से दावत इस्लामी खड़ी हुई है, ये जितने भी जिम्मेदार हैं सब समझते हैं इसको, والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على النبي
صلى الله تعالى على محمد